पृष्ठ संख्या 136। मुझसे कहा कि मृत्यु की खबर लिखो, मुर्दे के घर नहीं जाओ, मरघट जाओ। लाश को भुगताने के नियम, खर्च और कुप्रबंध, खोज खबर लिख लाओ। यह तुमने क्या लिखा? झुर्रियाँ, उनके भीतर छिपे उनके प्रकट होने के आसार, आँखों में उदासी सी एक चीज दिखती है। यह तुमने मरने के पहले का वृतांत क्यों लिखा? कुछ पते, कुछ चिट्ठियाँ से। अखबार में किसी घटना या दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के बारे में खबर पढ़कर हम जो कुछ भूल जाते हैं उसकी याद दिलाती है यह कविता। दुर्घटना या पुलिस की गोली से मरे आदमी की चीख और उसकी आंखों में जमी उदासी रघुवीर सहाय की कविता में जैसी मिलती है वैसी किसी अखबार में नहीं। जिन विशेषताओं के होने से आदमी इंसान होता है उनकी खोज कविता करती है, अखबार नहीं। रघुवीर सहाय जिन परिस्थितियों और अनुभवों पर कविता लिखते हैं उनकी सीमा और संभावना दोनों की तलाश करते हैं। यही वे उन कवियों से अलग होते हैं जो हर स्थिति और अनुभव की या तो केवल सीमा बताते हैं या अपार संभावनाएं देखते हैं। रघुवीर सहाय जिस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से कविता पैदा करते हैं वह ऐसा विवेक देती है जिससे मनुष्य को वस्तु बनाने वाली प्रक्रिया को पहचान कर पाठक उसके खिलाफ खड़ा होने की ताकत पाता है। आज के अखबार केवल पूंजी के तंत्र और इरादों से ही संचालित नहीं होते, वे सत्ता के संकेतों पर भी चलते हैं। सत्ता अखबारों का उपयोग कभी शास्त्र की तरह करती है और कभी शस्त्र की तरह। जनता को अखबार कभी सत्ता की ओर से आश्वस्त करते हैं और कभी आतंकित। रघुवीर सहाय अखबार की इन भूमिकाओं को पहचानते हैं। मरते मनुष्यों के मध्य खड़ा मक्कार मंत्री कहता है सविश्वास सरकार सिंचाई करे। सुनते हैं लड़के अधेड़, पढ़ते हैं याद करते हैं बूढ़े। यह विचार अखबार सीने पर धर जाता है लोहे के अक्षरों में एक धौंस, कोई छटपटाता नहीं आत्महत्या के विरुद्ध से। सत्ता और अखबार का यह गठजोड़ जनता को निरीह और गुलाम बनाए रखने। पृष्ठ संख्या 137 की राजनीति का वह पक्ष है जिसकी ओर दूसरे कवियों ने कम ही ध्यान दिया है। हिंदी में राजनीतिक कविता की भरमार के बावजूद इस राजनीति का झूठा सच बहुत कम कविताओं में दिखाई देता है। इसकी पहचान कराने वाली सबसे अधिक और अच्छी कविताएं रघुवीर सहाय के काव्य संसार में हैं। एक पतनशील सत्ता की सेवा करने वाली पत्रकारिता से साहस और स्वाधीनता की उम्मीदें कैसे की जा सकती हैं? ऐसी स्थिति में अखबार अगर सत्ता के इशारों पर नाचे तो क्या आश्चर्य। 20 खड़े अखबारों के प्रतिनिधि पूछें 25 बार, क्या हुआ समाजवाद? कहें महासंघपति 25 बार हम करेंगे विचार, आंख मार कर 25 बार हंसे वह, 25 बार हंसे 20 अखबार। आत्महत्या के विरुद्ध से। इस सब के बावजूद अखबार और पत्रकार लोक चेतना की रक्षा का दावा करते हैं। उनके दावों का खोखलापन खोल कर रख देती है रघुवीर सहाय की कविता। आजकल इस देश में अखबारों की दुनिया जैसी है उसमें वही पत्रकार सफल और सुखी होगा जो सत्ता और सेठ को एक साथ साध सके। इसलिए यहाँ घूर पर फुदकते हुए संपादक गदगद है। जबकि एक स्वाधीन पत्रकार, वह रघुवीर सहाय हो या कोई दूसरा, धक्का मार कर अखबार की दुनिया से बाहर निकाल दिया जाता है। अब तक हमने पत्रकारिता से रघुवीर सहाय की कविता के संबंध का वह पक्ष देखा है जिसमें कविता अखबार की दुनिया के भेद खोलती है, उसकी जन विरोधी और अमानवीय भूमिका के विरोध में खड़ी होती है। लेकिन पत्रकारिता से रघुवीर सहाय के कवि कर्म के संबंध का एक और पक्ष है। वह पत्रकारिता के अपने अनुभवों की मदद से समकालीन हिंदी कविता के परिचित रूप रंग और प्रचलित प्रभाव पद्धति को तोड़ते हुए ऐसी कविता लिखते हैं जिसका स्वभाव और प्रभाव दूसरे समकालीन कवियों की कविता से अलग है। पत्रकारिता केवल व्यवसाय और पेशा नहीं है, वह अपने समय की समस्याओं और समाज की वास्तविकताओं को देखने समझने की एक दृष्टि के साथ साथ उन सबको सबके सामने पेश करने की कला भी है। पत्रकारिता की यही दृष्टि और कभी-कभी कला भी आज के कवि के लिए उपयोगी है। खास तौर से ऐसे कवियों के लिए तो वह एकदम जरूरी है जो अपने समय की वास्तविक दुनिया के व्यक्तियों और वस्तुओं में गहरी दिलचस्पी रखता हो और उस दुनिया की गतिविधि को अपनी पृष्ठ संख्या 138 कविता में ठीक ठीक दर्ज करने के लिए बेचैन हो। ऐसा कवि यह भी चाहता है कि पाठक उसकी कविता में जब अपनी दुनिया को देखे तब बिना किसी भ्रम या भटकाव के उसे पहचान सके, क्योंकि बहुत बनी ठनी कविता अपने पाठकों को भटकाती है और भरमाती भी है। रघुवीर सहाय ऐसे ही कवि हैं, तभी तो वह चाहते हैं कि इन्वर्टेड कामा कविता भी वैसी ही जानदार हो सके जैसी कि वह वास्तविकताएं जिनसे हम कविता की प्रेरणा लेते हैं। इन्वर्टेड कामा बंद। यह अकारण नहीं है कि कई दूसरे कवियों की तरह रघुवीर सहाय अनुभूति की कोमलता और स्वच्छता की रक्षा के लिए जीवन के खुरदुरे तथ्यों की उपेक्षा नहीं करते। रघुवीर सहाय आज के कवि के लिए पत्रकारिता की विशिष्ट दृष्टि का महत्व जानते हैं। वे यह भी जानते हैं कि पत्रकारिता की कला एक कौशल के रूप में कविता के लिए उपयोगी और जरूरी है, लेकिन एक सीमा के बाद यह कविता के लिए खतरा भी है। जब कविता पत्रकारिता के आगे अपना सिर झुका देती है तब वह अखबारी कविता बन जाती है। रघुवीर सहाय इस खतरे से सावधान रहते हैं, इसलिए उनकी कविता पत्रकारिता के सामने समर्पण नहीं करती। उनके काव्य संसार में पत्रकार की दृष्टि कवि को कविता के कई पुराने पूर्वग्रहों से छुटकारा पाने में मदद करती है, तो कवि दृष्टि पत्रकारिता को अधिक संवेदनशील और मानवीय बनाने की कोशिश करती है। वह कविता की जमीन से सनसनीखेज और अमानवीय पत्रकारिता की आलोचना करते हैं, तो पत्रकार की दृष्टि से अपने में सिमटी सिकुड़ी लजीली कविता की खबर लेते हैं। वह कविता में समकालीन मनुष्य, उसके अनुभव और मानवीय रिश्तों की खोज जरूरी मानते हैं। इस काम में पत्रकारिता सहायक बनती है। उनकी कविता कवि दृष्टि से पत्रकार की दृष्टि के द्वंद्वात्मक रिश्ते से उपजी कविता है। जैसे कबीरदास की कविता एक बुनकर की कविता है, वैसे रघुवीर सहाय की कविता एक पत्रकार की कविता है। पत्रकारिता रघुवीर सहाय की कविता का विषय ही नहीं है, वह उनकी कविता के रचाओं में भी है। उनके काव्य कौशल की कई विशेषताएं पत्रकारिता से आई हैं और उनकी काव्य अनुभूति में ढलकर नया रूप पा गई हैं। तत्कालिकता अखबार की खबर की विशेषता है, लेकिन रघुवीर सहाय की कविता में वह मानवीय अनुभव की विशेषता बन गई है। वह जब कभी तत्कालिक अनुभवों पर कविता लिखते हैं तब उनके अस्थाई अभिप्रायों की खोज करते हैं, इसलिए कविता अखबारी तत्कालिकता से मुक्त होती है। लेकिन जब वह प्रेम और मृत्यु जैसे अस्थाई विषयों पर कविता लिखते हैं तब समकालीन समय और समाज में प्रेम और मृत्यु के अनुभवों की तत्कालिकता की अभिव्यक्ति करते हैं। रघुवीर सहाय अपनी कविता में नकली आश्वासन की वेदी पर जीवन के अनुभवों की तत्कालिकता की बलि नहीं चढ़ाते। उनकी कविता में अनुभूतियों की तत्कालिकता होती है, अखबारी सूचनाओं की नहीं। इसलिए एक पाठ पृष्ठ संख्या 139 के बाद उसकी ताजगी मरती नहीं, हर पाठ के दौरान वह नए रूप में जी उठती है। रघुवीर सहाय की कविता एक और स्तर पर पत्रकारिता की चुनौती का मुकाबला करती है। प्रायः अखबार सूचनाएं देते हैं, सवाल नहीं करते। सूचनाएं पाठकों को संतुष्ट करती हैं, बेचैन नहीं करती। इस प्रक्रिया में पाठक की चेतना जड़ होती जाती है। रघुवीर सहाय कविता में सूचनाएं भी देते हैं। नागार्जुन के बाद संभवतः उन्हीं की कविता में समकालीन भारतीय समाज की सबसे अधिक सूचनाएं दर्ज हैं, लेकिन वह कविता में सूचनाएं देकर संतुष्ट नहीं हो जाते। उनकी कविताएं अपने समय और समाज की खबर देती हुई बार बार सवाल पूछती हैं और पाठकों को नए सवाल करने के लिए उकसाती भी हैं। वह सवाल पाठक को सजग बनाते हैं, उसकी चेतना नई संभावनाओं की तलाश में सक्रिय होती है। इस तरह कविता परिवर्तन की प्रक्रिया तेज करती है। रघुवीर सहाय उन कवियों में हैं जो अपने समय और समाज का कवि होने में अपने कवि कर्म की सार्थकता मानते हैं, इसलिए वह समकालीन जिंदगी की भाषा में उसी जिंदगी की वास्तविक स्थितियों और अनुभवों की कविता लिखते हैं। वह परंपरा की खुदाई से मिले शब्दों में दिमागी ऊहापोह की कविता नहीं लिखते। इस सजगता के मूल में उनकी पत्रकार दृष्टि की सक्रियता भी एक कारण है। उनकी कविता में समकालीन समाज की खबरें हैं, लेकिन वह मानवीय अनुभवों की खबरें हैं। उन खबरों में टूटते बिखरते मानवीय रिश्तों की पहचान है और नए मानवीय रिश्तों की खोज भी। वहाँ अनुभवों की तत्कालिकता है, लेकिन उसके साथ ही संघर्ष की चेतना की परंपरा का अभिज्ञान भी है। ऐसी ही कविताओं के बारे में एज्रा पाउंड का यह कथन सार्थक लगता है कि कविता ऐसी खबर है जो हमेशा खबर बनी रहती है। रघुवीर सहाय ने एक बड़ा काम यह किया है कि उन्होंने कविता के पुराने प्रभाव मंडल से कविता को मुक्त किया है। उससे कुछ अद्भुत अपूर्व की उम्मीद करने के बदले उसे सहज साधारण जिंदगी की छोटी से छोटी घटनाओं और स्थितियों का आत्मीय साक्षी बनाया है। जिस समय हिंदी में कविता से समाज के बुनियादी वर्गों के वर्तमान तथा भविष्य से जुड़े बुनियादी सवालों से जूझने की मांग हो रही थी और उसके परिणाम स्वरूप महान विषयों पर तुच्छ कविताएं लिखी जा रही थीं, उस समय रघुवीर सहाय ने अपनी कविता को अत्यंत साधारण आदमी की जिंदगी के रोज बा रोज के अनुभवों से जोड़ा। इसीलिए उनकी कविता विलक्षणता के विरुद्ध और सहज साधारण के साथ खड़ी दिखाई देती है। उसमें चमत्कार की चिंता नहीं, बौद्धिकता का दंभ नहीं, विशिष्टता का पाखंड नहीं और नाटकीय अंदाजे बयां नहीं है। दिल्ली में सामान्य जन की जिंदगी के अनुभवों पर लिखी कविताओं, खासतौर से स्त्री और बच्चों पर लिखी कविताओं में रघुवीर सहाय की यह काव्य दृष्टि बार बार पृष्ठ संख्या 140 सामने आती है। चढ़ती स्त्री, सेव बेचना, दो छोटे बच्चे जैसी कविताएं पढ़ने वाला कोई भी सावधान पाठक स्वीकार करेगा कि जीवन के मामूली अनुभव पर भी अच्छी कविता लिखी जा सकती है, बशर्ते कि कवि के पास संवेदनशील दृष्टि और रचना की क्षमता हो। हिंदी में कई कवि व्यक्ति और समाज के जीवन की बड़ी बड़ी बातों, नाटकीय घटनाओं, विलक्षण स्थितियों और बुनियादी समस्याओं पर ही कविता लिखते हैं और इस भ्रम में प्रसन्न रहते हैं कि विषय जितना महान होगा कविता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। रघुवीर सहाय ऐसे कवि नहीं हैं। वह समाज और व्यक्ति के जीवन की छोटी से छोटी बातों, घटनाओं, स्थितियों और समस्याओं के बीच भूली भटकी हुई जिंदगी की सच्चाइयों की कविता लिखते हैं। रघुवीर सहाय जानते हैं कि हमारी रोज रोज की जिंदगी में ब्यौरा का बहुत महत्व होता है, बल्कि ब्यौरे के बीच से ही जिंदगी का रूप उभरता है। वह पत्रकारिता के अनुभव से यह भी जानते हैं कि ब्यौरों से बचने वाली भाषा हवाई होती है, इसलिए उनकी कविता ब्यौरों से बचने की कोशिश नहीं करती। उनकी कविता की भाषा ब्यौरों के बीच से गुजरती हुई जिंदगी के यथार्थ और अनुभवों को मूर्त रूप में सामने लाती है। वह ब्यौरों में छिपी विडंबनाओं, संरचनाओं में खोई संवेदनाओं और तथ्यों के बीच मौजूद सच्चाइयों की खोज के लिए बेचैन भाषा है। लेकिन ब्यौरों के बावजूद अपने विशेष रचाव के कारण वह अखबार की भाषा की तरह अर्थ की दृष्टि से इकहरी और सतह पर जीने वाली नहीं होती। रघुवीर सहाय की कविता में कई बार ब्यौरे, तथ्य और सूचनाएं वही होती हैं जो प्रायः अखबारों में मिल जाती हैं, लेकिन उनको नए संदर्भ में रखकर उनके बीच नए संबंध और नए अर्थ पैदा करने वाली दृष्टि कवि की होती है। ऊपर से अखबार की भाषा जैसी सरल सहज दिखने वाली, रघुवीर सहाय की काव्य भाषा की सरलता में ऐसी दक्षता होती है जो एक और सतह पर सब कुछ पा जाने की आशा करने वाले पाठकों को धोखे में डाल देती है, तो दूसरी ओर जटिलता में ही कविता खोजने वालों के लिए गूढ़ बन जाती है। रघुवीर सहाय काव्य भाषा की काल्पनिक शुद्धता के पीछे नहीं भागते, बल्कि वह पत्रकारिता और राजनीति के प्रयत्नों से बिगड़ी और भ्रष्ट की गई भाषा का प्रायः ऐसा प्रयोग करते हैं कि आज की जिंदगी के यथार्थ की सारी विरूपता लगभग पूर्णता के साथ उनकी कविता में उतर आती है। पत्रकार की दृष्टि रघुवीर सहाय की कविता के रचाओं में कई तरह के काम करती दिखाई देती है। कहीं वह विषय के चुनाव में सक्रिय होती है, तो कहीं काव्य वस्तु के बनाव में। उनकी अनेक कविताएं घटनाओं, स्थितियों, व्यक्तियों और अनुभवों का वृतांत मालूम पड़ती हैं, लेकिन वैसा वृत्तांत नहीं जैसा रोज अखबारों में छपता है। पृष्ठ संख्या 141, फणीश्वरनाथ रेणु के सूखा और बाढ़ पर लिखे वृत्तांत की तरह सृजनात्मक अमानवीय स्थितियों के बीच मानवीयता की तलाश के वृत्तांत रघुवीर सहाय की अकाल हत्या के विरुद्ध और दुर्भिक्ष लोग भूल गए हैं जैसी कविताओं के साथ अकाल पर लिखी हिंदी की दूसरी कविताओं को रखकर आप पढ़ें तो वृत्तांत वाली बात समझ में आ जाएगी। उनकी कई कविताएं पहली नज़र में रपट सी लगती हैं क्योंकि विषय के साथ साथ उनकी बनावट और भाषा में आसपास की जिंदगी की सहजता प्रकट होती है, किसी तरह की दार्शनिक मुद्रा या चमत्कार नहीं। वहाँ कविता में कुछ सिद्ध करने के आग्रह की जगह कुछ खोजने की कोशिश होती है। इस प्रक्रिया में कविता का रूप नया हो जाता है, उसमें बातचीत, कथा, सवाल, सूचनाएं आदि के आने की छूट मिल जाती है। ऐसा खुलापन पत्रकारिता में होता है। एक अधेड़ भारतीय आत्मा, गुलाम स्वप्न, विचित्र सभी और मरघट जैसी कविताओं में यह खुलापन दिखाई देता है। यह खुलापन कविता के रूप में जनतंत्र का एक लक्षण है। रघुवीर सहाय की कविता के प्रति पाठकों के विशेष आकर्षण का एक कारण कविता की भाषा है। उसका रूप सहज लगता है और रचाव आत्मीय। प्रायः कहा जाता है कि उनकी कविता की भाषा बोलचाल की चलती हुई भाषा है या कि वह अखबार की भाषा जैसी लगती है। ऊपरी तौर पर ये बातें सही हैं, लेकिन इनसे उनकी काव्य भाषा की बुनावट की कोई बुनियादी विशेषता प्रकट नहीं होती। कई दूसरे कवि भी बोलचाल की भाषा में ऐसी कविता लिखते हैं। यह खूब संभव है कि बोलचाल की भाषा में ऐसी कविता लिखी जाए जिसमें जिंदगी की जटिल वास्तविकताओं का सरलीकरण हो, समाज की सच्चाइयों की समझ के बदले भ्रमों की भरमार हो या महज भावुकता का विस्तार हो। रघुवीर सहाय की कविता में वह सब नहीं है, क्योंकि वहाँ वास्तविकता से भाषा के आत्मीय रिश्ते की पहचान है। कविता जिस जिंदगी की वास्तविकता के अनुभवों को अधिक से अधिक पूर्णता के साथ अपना बनाकर पाठकों तक पहुँचाना चाहती है, उसकी अपनी भाषा होती है। उसी भाषा में उस जिंदगी की वास्तविकताओं का बोध होता है और उनका अनुभव घटित होता है। अगर किसान जीवन के अनुभवों को मध्यवर्गीय भाषा में या फिर आज की जिंदगी के अनुभवों को छायावादी कविता की भाषा में व्यक्त करने की कोशिश होगी, तो यथार्थ के अनुभव और भाषा के बीच फांक रह जाएगी, जो कविता के लिए घातक होगी। जो कवि यथार्थ से भाषा के आत्मीय संबंध पर ध्यान नहीं देते, वे बोलचाल की भाषा में कविता लिखते हुए भी अवास्तविक अनुभव की कविता लिखते हैं। रघुवीर सहाय वास्तविकता से भाषा के रिश्ते की गति, लय और अंदाज को पहचानते हैं, इसलिए उनकी कविता में यथार्थ के अनुभव और उसको व्यक्त करने, पृष्ठ संख्या 142 वाली भाषा के बीच कोई दरार नहीं होती, तभी उनकी कविता का यथार्थ जानदार और अनुभव असरदार होता है। वह शहरी मध्यवर्ग की जिंदगी के यथार्थ के अनेक रूपों के अनुभवों को उसी जिंदगी की भाषा में मूर्त और संवेद्य बनाते हुए रचते हैं, इसलिए उनकी भाषा में राजनीति और पत्रकारिता की भाषा का रचनात्मक प्रयोग मिलता है। कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियाँ की कविताओं में संचार माध्यम की भाषा जगह जगह आई है, क्योंकि इन दिनों हमारी जिंदगी के अनुभवों में संचार माध्यमों का दखल बहुत बढ़ गया है। आजकल हिंदी के कई कवि कविता में भाषा का जनवाद पैदा करने के लिए गांव के बोलचाल के कुछ शब्दों को जानबूझकर जबरदस्ती ले आते हैं। रघुवीर सहाय ऐसा नहीं करते। उनकी कविता में जहाँ गांव और शहर मिलते हैं, दोनों के अनुभवों की मुठभेड़ होती है, वहीं गांव के अनुभव के साथ उसकी भाषा भी आती है और शहरी जिंदगी की भाषा से टकराती हुई कविता की भाषा में नई टंकार पैदा करती है। प्रसिद्ध उपन्यासकार ग्रेवियल गार्सिया मार्केज ने एक साक्षात्कार में कहा था कि विचित्र और अविश्वसनीय लगने वाली बातों को सहज और विश्वसनीय बनाने की कला मैंने पत्रकारिता से सीखी है। उस कला का रहस्य यह है कि बात को बिना किसी दुविधा और लाग लपेट के सीधे कहें। मार्केज ने इस कला का अद्भुत उपयोग अपने उपन्यास पहले से मालूम मौत का वृत्तांत (ब्रैकेट में क्रॉनिकल ऑफ ए डेथ फोरटोल्ड) में किया है। उपन्यास में एक ऐसी हत्या की कथा कही गई है जिसका पहले से अनुमान था। अनुमान के बावजूद हत्या हुई, अकेले में नहीं, सड़क के बीचों बीच भीड़ के सामने। उस घटना के वर्षों बाद एक खोजी पत्रकार मारे गए व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की स्मृतियों और घटना से जुड़ी परिस्थितियों की छानबीन करता है। उस छानबीन के ताने बाने से ही उपन्यास की कथा बुनी गई है। वाचक को खोजी पत्रकार बनाकर मार्केज ने पत्रकारिता की मदद से विचित्र और असंभव होने वाली कथा को सहज और विश्वसनीय बना दिया है। मार्केज के इस उपन्यास के वर्षों पहले रघुवीर सहाय ने रामदास कविता में पत्रकारिता की इस कला का अत्यंत कुशल प्रयोग किया था। उपन्यास के नायक की तरह रामदास को भी मालूम था कि उसकी हत्या होगी, बल्कि सभी जानते थे कि उस दिन उसकी हत्या होगी। उसकी हत्या हुई बीच सड़क पर भीड़ के सामने। रघुवीर सहाय की कविता और मार्केज के उपन्यास में कई स्तरों पर इतनी समानता है कि दोनों को एक साथ पढ़ने वाला कोई भी पाठक जरूर चकित होगा। दोनों वृत्तांतों में न कोई नाटकीयता है और न भावुकता। स्थितियों के वर्णन और घटनाओं के बयान में एक ऐसी तटस्थता है जो पाठकों के मन में सिहरन पैदा करती है। यही दोनों रचनाओं का उद्देश्य भी है। दोनों रचनाओं का प्रभाव देर तक पाठक का पीछा पृष्ठ संख्या 143 करता है। उपन्यास में पत्रकार उतना अनुपस्थित नहीं है जितना रघुवीर सहाय की कविता में। विलक्षण को सहज संभव बनाने वाली पत्रकारिता की कला दोनों में है। कविता में पत्रकार की दृष्टि है, घटना का तटस्थ रहकर वर्णन करने की दृष्टि। कविता की अंतिम पंक्तियों में वह विडंबना है जो उसे एक व्यक्ति की हत्या से आगे बढ़कर एक समाज की मरती हुई चेतना की कविता बना देती है। भीड़ ठेल कर चला गया वहाँ, मरा पड़ा है रामदास यहाँ। देखो देखो बार बार कहा, लोग निडर उस जगह खड़े रहा। लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। हंसो हंसो जल्दी हंसो से। इन पंक्तियों में संकेत की जो शक्ति है वह कविता की अपनी विशेषता है। इस तरह कविता अपने समय और समाज की खबर देती है। कविता की अंतिम दो पंक्तियाँ पूरी कविता को नया अर्थ देती हैं। अकेला एक शब्द निडर प्रत्येक पाठक को भयभीत करने के लिए काफी है। जिस समाज में ऐसे निडर लोग होंगे उसमें हर मामूली व्यक्ति कितना डरा हुआ होगा यह अलग से कहने की जरूरत नहीं है। आजकल हिंदुस्तान के हर शहर और गांव में हर रोज कोई रामदास ऐसे ही निडर लोगों के सामने इसी तरह मारा जा रहा है। जब समाज में नैतिक साहस मरने लगता है तब साधारण आदमी अधिक असहाय होने लगता है और हत्यारे अधिक आजाद। यह स्थिति भारत में है और दक्षिण अमेरिका के अनेक देशों में भी, जिसकी पहचान दोनों रचनाओं में है। रघुवीर सहाय की कविता और मार्केज के उपन्यास के बीच चकित करने वाली समानता के पीछे यही पहचान है जो दोनों की पत्रकार दृष्टि की देन है।